नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से नई दिल्ली में बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। रेलवे ने मौनी अमावस्या के लिए 244 विशेष रेलगाड़ियां चलाई। 4,50,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जॉइंट्स के बीच वडोदरा में मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, सुपर कंप्यूटिंग और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि रणनीतिक रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष अवसंरचना विकास और उसके व्यवसायीकरण पर संयुक्त पहल तथा गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी के क्षेत्र में समझौते हुए। श्री मिश्री ने बताया कि दोनों देशों ने HPCL इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के एडनोक गैस के बीच क्रय विक्रय के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमत हुआ है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश वर्ष 2032 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं।
On the trade front, following...
व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 मिलियन को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि कोई भी देश आतंकी कृत्यों को वित्त पोषित करने, योजना बनाने, समर्थन करने या अंजाम देने वालों को पनाह न दे। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने और धन शोधन विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए वित्तीय कार्रवाई बल के ढांचे के भीतर सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिरकोस्की के साथ आज नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के समय में अमरीका और फ्रांस ने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था।
पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में और इस वर्ष जनवरी में पेरिस में हमने यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों पर खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। हमने बार बार इस बात पर बल दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है और मैं आज फिर से इसे दोहरा रहा हूँ।
डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिरकोस्की के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी, रक्षा, खनन और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत हुई। फिलीपींस में हाल ही में आए भीषण तूफान के बाद भारत ने 30 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है। ये सामग्री लेकर भारतीय विमान C-17 फिलीपींस के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत संकट के समय सहयोगी देशों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। एक रिपोर्ट।
विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में आईएमएफ ने कहा है कि ये वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% का अनुमान व्यक्त किया है। आईएमएफ ने कहा है कि अपेक्षित मंदी के बावजूद भारत उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि का एक प्रमुख चालक बना हुआ है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण भारत में मुद्रास्फीति 2025 में उल्लेखनीय गिरावट के बाद लक्ष्य स्तर के करीब वापस आने की उम्मीद है। इससे घरेलू मांग को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा। समाचार कक्ष से फरहत नास।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। डॉ. लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के सभी 37 सेट प्राप्त हुए हैं। जांच करने पर सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए और वैध पाए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों वाले समूह द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। भारत ने 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि लगभग 30 अरब डॉलर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन से संचालित स्मार्टफोन के निर्यात से प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात है। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई यात्री किरायों में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा है कि हवाई किरायों में होने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वह हस्तक्षेप करेगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एयरलाइन द्वारा हवाई यात्री किरायों में की गई अत्यधिक वृद्धि को शोषण करार दिया। पीठ ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी तय की है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय विशेष गहन पुनरीक्षण में मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इससे किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल लोगों के नाम प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अहमदाबाद में जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री आठवले ने विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 16 तारीख तक देश भर में 652 लाख हेक्टेयर से अधिक रबी फसल की बुवाई हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि दलहन की बुवाई में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चतरु क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल एक पैरा ट्रूपर की मौत हो गई। किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान के दौरान यह मुठभेड़ हुई। अभियान कल चतरु क्षेत्र के मंदरल सिंहपुरा के पास सोनार गांव में शुरू किया गया था। अभियान के दौरान आतंकी मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आज 6 महिलाओं सहित 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सब पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम था। इन्होंने आज पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस अवसर पर श्री मिश्र ने बताया कि इन माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद अब गरियाबंद जिले में कोई भी सक्रिय माओवादी नहीं बचा है। अपर महानिदेशक MV पाठक ने पश्चिमी तट के तटरक्षक बल कमांडर के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 1989 बैच के अधिकारी श्री पाठक जुलाई 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे और उन्होंने सभी श्रेणियों के तटरक्षक जहाजों की कमान संभाली है। देश इस वर्ष 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के अंतर्गत कई अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की एक अनुपम झलक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परेड को देखने के लिए करीब 10,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें नवाचारक, स्टार्टअप से जुड़े युवा, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही आय और रोजगार सृजन में अहम योगदान देने वाले लोगों को भी इस परेड में शामिल होने का अवसर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन लोगों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उनके योगदान का सम्मान करना और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जनभागीदारी को और मजबूत करना है। सौम्या शरण के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। भारतीय रेलवे ने मौनी अमावस्या के अवसर पर 244 विशेष रेलगाड़ियां चलाईं। इनमें 4,50,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। इस दौरान रेलवे ने 3 से 18 जनवरी के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाईं। रेल मंत्रालय ने बताया कि प्रयागराज में कल त्योहार के दौरान यात्रियों के लिए 40 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं और इसमें लगभग 1,00,000 यात्रियों ने यात्रा की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुदर्शनी कल 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह जहाज 22,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करेगा और इस दौरान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों का दौरा करेगा। ये फ्रांस में आयोजित होने वाले एस्केल आसेट और अमरीका के न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले सेल 250 में भाग लेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर सहयोगी देशों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए जाने वाले टैरिफ की धमकी पूरी तरह गलत है और व्यापार संघर्ष किसी के हित में नहीं है। लंदन में संवाददाता सम्मेलन में श्री स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन, यूरोप, नाटो और अमरीका में सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करेगा और बातचीत जारी रखेगा। पिछले शनिवार को श्री ट्रंप ने कहा कि वो ब्रिटेन सहित 8 यूरोपीय देशों से प्राप्त वस्तुओं पर फरवरी से 10% आयात शुल्क लगाएंगे। अफगानिस्तान में आज मध्य काबुल के कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में स्थित एक होटल में विस्फोट हुआ। इसमें कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने बताया कि विस्फोट का निशाना शहर नाव का होटल था, जो एक व्यावसायिक इलाका है और इसके आसपास बड़े दफ्तर इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूतावास हैं। अभी तक किसी भी गुट ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में वडोदरा में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आरसीबी ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मौसम विभाग ने कल दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त CPFC रमेश कृष्णमूर्ति के साथ कर्मचारी नामांकन योजना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना विषय पर चर्चा प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से कर्मचारी नामांकन सामाजिक सुरक्षा लाभ, भविष्य निधि अंशदान और कर्मचारी नामांकन योजना से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से नई दिल्ली में बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। रेलवे ने मौनी अमावस्या के लिए 244 विशेष रेलगाड़ियां चलाई। 4,50,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जॉइंट्स के बीच वडोदरा में मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।